رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر صحیح بخاری میں سے آج ہم شروع کریں گے کتاب الوتر. وتر کا بیان جو بک میرے پاس ہے اس کے مطابق پیج نمبر 366 ہے. باب پہلا ہے لیکن حدیث کا نمبر 539 ہے اور آپ انشاءاللہ اس باب میں بہت کچھ سیکھیں گے. ہم وتر کے بارے میں کچھ اور ہی کانسیپٹ رکھتے ہیں شروع سے, لیکن جب ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. آئیے شروع کرتے ہیں. باب نمبر ایک ہے ما جاء فی الوتر, وتر کے متعلق جو وارد ہوئی, یعنی جو چیزیں حدیث میں ہمیں وتر کے بارے میں پتہ چلتی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شب کے متعلق دریافت کیا. یعنی دیکھیں صحابہ کے سوال کیا ہوتے تھے کہ ہم رات کو کیا عبادت کریں, ہم کیا پڑھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا, رات کی نماز دو دو رکعت ہے. کیا پتہ چلا؟ یہاں سے پہلی چیز اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تہجد کا موقع دے, رات کو ہم قیام کریں تو دو دو پڑھنی ہے, چار نہیں پڑھ سکتے. یعنی نفل میں دو رکعت کر کے دو دو کر کے آپ جتنی بھی پڑھ لیں گے لیکن دو دو ہوں گی. پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ, پھر جب تم میں سے کسی کو خوف ہو صبح کا, مطلب کیا ہے کہ صبح ہونے والی ہے, فجر کی نماز قریب ہے, کیا کرے؟ صلی رکعتن واحدتن, تو پڑھ لے ایک رکعت. تو تیرو لہو ما قد صلی, تو وتر بنا دے گی اس چیز کو جو اس نے پڑھی. بات سمجھ آئے؟ اب یہاں سے آپ کو لفظ وتر کی آج وجہ بھی سمجھ آئے گی. وتر کیا ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا ہے قرآن میں؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, وہاں وتر ہے. ہم وتر بولتے ہیں نا, لیکن اگر آپ دیکھیں سورہ فجر کی آیت ہے نا, والفجر والیال نش والشفع والوتر, ٹھیک ہے. اب یہ جو فل وتر آئے نا, تو فی کی وجہ سے وتر بنتا ہے. بہرحال یہ وتر بولے یا وتر, معروف لفظ تو وتر ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آڈ. آڈ کس کو آپ کہتے ہیں؟ جیسے ایک تین پانچ سات. اس کو اور تھوڑا سا قریب لے کے جائیں نا تو وتر ایک کو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ وتر ہے, خلاصہ اس کا کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے. اب جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز وتر, تو ہمارے ہاں تو وہی معروف ہے نا عشاء کی نماز کے بعد تین رکعت, یہ صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. اس حدیث میں دیکھیے ساری رات میں جو بھی نفل عبادت ہوئی دو دو کر کے, دو رکعت پڑھ لیں, چار پڑھ لیں, چھ پڑھ لیں, آٹھ پڑھ لیں, جو ہی آپ کو فیل ہو کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے تو ایک پڑھ لیں. اگر آپ نے آٹھ پڑھی تھی نا تو وہ ایک مل کر نو ہو جائیں گی. اگر آپ نے چھ پڑھی تھی تو یہ ایک مل کر سات ہوں گی. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سلام سے گیارہ رکعت تک پڑھی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے کانسیپٹ میں لوگوں کا ہے کہ وتر صرف تین ہی پڑھے جاتے ہیں اور عام طور پہ مغرب کی نماز کی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. دیکھیں جتنی بھی ہے دو دو کر کے پڑھتے جائیں, جب لگے کہ اب وقت پورا ہو رہا ہے, اب ہم نے نماز پوری کرنی ہے, فجر کا وقت قریب ہے, ایک رکعت پڑھ لیں. وتر ایک ہی ہوتا ہے. آپ دو نفل پہلے پڑھیں گے تو ایک وتر ملا تو تین رکعت ہو جائے گی. جب آپ اور میں تین وتر پڑھتے ہیں نا تو اصل میں دو نفل اور ایک وتر ہے. اس کا تھوڑا سا اور بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وتر پسند ہے, اوڈ پسند ہے. اب صبح میں فجر کے دو فرض ہوئے, ظہر کے چار ہوئے, عصر کے چار ہوئے, टोटल कितने हो गए? 10। मगरिब पड़ी 3, टोटल कितने हो गए? 13। 13 से दिन की बात तो में आखिरी इबादत मगरिब होती है, रोशनी में जब हम पढ़ते हैं, तो ये मगरिब के 3 रक्तों की वजह से ऑड हो गई। रात के अंधेरे में जो नमाज पढ़ी जाती है वो ईशा, उसके 4 है, उस 4 को वितर करने के लिए ये वितर साथ पढ़ा जाता है। समझ आई बात? यानी दिन की इबादत मगरिब के 3 रक्तों पे ऑड हो जाती है और रात की इबादत इस वितर के साथ ऑड होंगी। बस इतनी सी बात है। इस सारे के अंदर ये जहन में रखिए कि नमाज वितर मुस्तकिल एक नमाज है जो ईशा के बाद फजर तक रात के किसी भी हिस्से में पढ़ी जा सकती है। इसे तहज्जुद भी कहते हैं, कयामुल लैल भी कहते हैं और तरावी भी कहते हैं। ये जुमला नोट करें, ये तीनों एक ही नमाज के नाम है। इसकी कम अज कम 1 रकत और ज्यादा से ज्यादा 13 रकतें हैं। अक्सर उलमा के नजदीक नमाज वितर सुन्नत है जिसकी ताकीद की गई है। इस हदीस से 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि रात के नवाफिल 2-2 रकत करके पढ़ने चाहिए और दूसरी ये कि वितर की 1 रकत पढ़ना भी साबित है। बात वाज़े हो गई है। नमाज वितर क़ियामुल लैल ही का दूसरा नाम है। कुछ भी नहीं रात को अब जाग सके ना तो 1 वितर जरूर पढ़ लें। अच्छा, हमारे कल्चर में तो ईशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते हैं ना, और वो 17 रकते बनते भी तब है जब हम इसके साथ 3 रकत और 2 नफिल भी लोग बाद में शामिल करते हैं। नमाज ईशा के साथ वितर का कोई ताल्लुक नहीं है। बात वाजी
जी।
हाँ, ये रात की इबादत का एक आखिरी हिस्सा है। अब आगे अगली हदीस से पढ़ेंगे ना तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली 11 रकअतन। हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद 11 रकात पढ़ा करते थे। अब नोट कीजिए ना, 11 रकते वितर पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। कानत तिल का सलातुहू, यही आपकी नमाज होती थी। तानी बिल लैल, यानी रात की नमाज। फयसजुदु सजदत मिन ज़ालिका क़द्र मा यक़रउ अहदकुम 50 आया। इस नमाज में सजदा इस कदर तवील करते थे कि आप सर उठाने से पहले तुम में से कोई 50 आयतें तिलावत कर लेता। सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह के नबी सल्लम का सजदा इतना लंबा था कि उसमें 50 आयतों की तिलावत हो जाए। नोट कीजिए, पढ़नी नहीं है क्योंकि सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन मिसाल दी गई है कि 50 आयतें पढ़ने में जितना वक्त लगता है उतना लंबा आपका सजदा होता था। कबल यरफा रासहू, इससे पहले कि वो अपने सर को उठा ले। वह यरकउ रकअतैनि कबल सलातिल फजरी, फिर वो पढ़ते 2 रकत सलाते फजर से पहले। यस्तजऊ अला शिक्क हिल अयमन, यस्तजा कहते हैं लेटने को, अला ऊपर, शिक्क हिल अयमन दाई जानिब, हत्ता यहां तक कि यात यहुल मुअज्जिनु लिस्सलात, यहां तक कि मुअज्जिन नमाज के लिए अजान दे देता। क्या पता चला कि फजर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते थे। ये जो 2 रकतें ये कौन सी है? फजर की 2 सुन्नतें हैं। और आप पता कि नबी सल्लम ने कभी भी ये रकतें नहीं छोड़ी थी, ना सफर में ना गैर सफर में। और उसके बाद ये जो लेटना था ये कौन सा लेटना होता है आप समझिएगा। एक बंदा रात का उठा हुआ, घंटा पहले उठ गया, अब उसने उठकर 8 रकतें भी पढ़ ली तहज्जुद की, फिर उसको वितर भी बना लिया, 9 कर ली, या 11 रकतें टोटल पढ़ी। इतने में मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाह अकबर, अब 2 सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। वो शख्स जो घंटा देर से जाग रहा था, तो उसको एक फ्रेश अप लेने के लिए उधर ही अपने जाए नमाज पे दाई करवट, ये देखिए, यानी दाई के मतलब ये कि लेफ्ट साइड आपकी ऊपर है और राइट साइड आपकी नीचे, तो जाए नमाज पे अल्लाह के नबी इस तरह से लेटते थे। वजह फजर के फर्जों के लिए। हम कहते हैं इतनी देर रह गई, ये 5 मिनट में हमने तो 2 फर्ज पढ़ने हैं। आप कहते हैं अल्लाह के नबी की सबसे तवील किरत फजर में होती थी। सूरह कौफ पढ़ के देखें, अभी भी माशाल्लाह 26वें पारे में देखते हैं कितनी तवील सूरत है। तो आपकी फजर भी लंबी होती थी, इसलिए आप उससे पहले एक हल्की सी करवट लेते थे। अब सवाल पैदा होता, हम तो अभी सो के, क्या हम भी सुन्नतों के बाद लेटे? बिल्कुल लेटे, सुन्नत समझते हैं, हमें थकन नहीं है, लेकिन हम जी अपने आप को लेटाएंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे, ये मुराद है। ठीक है, दूसरी रिवायत में कि रमजान या गैर रमजान में कभी 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे, अलबत्ता बाजू का 13 रकत भी साबित है, जैसा कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया। सुबह की सुन्नतें अदा करके दाई जानिब लेटना भी सुन्नत है, क्योंकि आप अच्छे कामों में दाई जानिब को पसंद करते थे। अभी तक जो बातें की हैं उसका खुलासा करूं। नंबर एक, वितर ईशा का हिस्सा नहीं है। वितर के जरिए अल्लाह ताला हमारी रात की इबादत को ऑड बना देते हैं। दो दो करके रात की नमाज पढ़ी जाएगी, मैक्सिमम नबी सल्लम ने 11 ही पढ़ी। अब आप देखिए कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि वही दीन तो एक मरगूला क्यों बन गया आज। मरगूला समझते हैं, यानी रल मिल गया दीन। बाज मस्जिदों में 20 तरावियां भी होती थी और उसके फौरन बाद क़ियामुल्लैल भी शुरू हो जाता था, है ना। बाज जगह सिर्फ 5-6 मिनट ही बीच में 10 मिनट मिलते होंगे और क़ियामुल्लैल शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से बाज जगह लोग 8 तरावी भी पढ़ते हैं, बाद में उधर भी पढ़ते हैं। वल्लाहु आलम, मैं आपको अपना अमल बताती हूँ जो मुझे सुन्नत पढ़ने के बाद समझ आया। पढ़नी 8 ही है और 11, यानी 3 टोटल 11 पढ़ लें, लंबी कर लें, तवील कर लें। ताक रातों में अगर आपको लगता है कि मस्जिद में रात को आखिरी वक्त में नफिल होते हैं, आप शुरू में 4 पढ़ लें या फर्ज पढ़ के छोड़ दें, आप वो आखिरी क़ियामुल लैल के 8 पढ़ लें। देखिए असल अजर जो है ना वो सुन्नत की तबाक है। क्वांटिटी नहीं चलती, क्वालिटी चढ़ती है। इंडो पाक कल्चर है जिसके अंदर ये पूरा कुरान खत्म करना। आप अरब मस्जिदों में देखें, जैसे सारे सफा ये तौफीक मस्जिद में बैठे थे तो मोर स्माली ब्रदर्स हैं, तो मैं आदतन पूछ रही थी अच्छा आपकी इस मस्जिद में खत्म कुरान कब है, कहते हैं यहाँ खत्म कुरान नहीं होता, ये पाकिस्तानी मस्जिदों में होता है। राबता मस्जिद में जाके आप देखिए, मेरी अम्मी इस दफा दुबई में थी भाई, अब वहां एक से खूबसूरत मस्जिद, पता ही कोई नहीं कि कुरान कब खत्म कब शुरू। कई मस्जिदें उसमें सिर्फ लंबी सूरत एक एक रकत पढ़ा देते हैं, कई में बिल्कुल छोटी सूरतें होती हैं। क्योंकि हमारे बच्चों ने और हमने शुरू से यही कल्चर देखा ना, आज पहली तरावी है तो आज आखिरी, आज मिठाई का डब्बा और वो नमक पारे और लड्डू भी बटते हैं, तो कभी आप किसी अरब मुल्क में जाएं तो उम्मीद ना रखें कि आपको उस दिन शक्कर पारे मिलेंगे, उधर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नबी सल्लम का अमल, जब से मैंने ये चीजें खुद पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने उस्तादों से भी शेयर किया, मेरा अपना भी यही अमल है। पढ़नी 11 है मैक्सिमम, कुछ शुरू रात की पढ़ ले, कुछ आखिर रात की पढ़ ले, या आपको लगता है कि मैंने रात को भी जागना है और इधर शुरू से सबके साथ पढ़ ही रही हूँ, 6 पढ़ के 2 छोड़ दें, वो 2 आखिरी रात में 1 घंटे में जाके एक्सपायरा पढ़ ले, आपकी मर्जी है। तो ये नफिल चीजें। और अगली चीज हमने इसमें क्या देखी कि फजर की 2 सुन्नतों के बाद सुन्नत समझते हुए लेटना है और दाईं जानिब को ऊपर रखना है। अब आप देखिए कि इसको भी आज साइंस के साथ रिलेट करके देखें, जब एक बंदा खड़ा है 13 रकते पढ़ रहा है तो उसका ब्लड लेवल नीचे आया होता है। हो सकता है कि एक बंदा इतना मुसलसल खड़ा रहने की वजह से एकदम उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो ये जो लेटना होता है ना थोड़ी देर, ये बॉडी के अंदर ब्लड को भी रोटेट करवा देता है। और दाईं करवट लेटते थे क्यों, आज साइंस आपको बताती है कि आपका दिल लेफ्ट साइड पे है, जब आप दाईं पे लेटते हैं तो दिल ऊपर आता है तो उस पर बोझ नहीं पड़ता, और उसके ऑपोजिट आप दूसरी तरफ लेटेंगे तो दूसरी तरफ होगा। साइड की बात है लेकिन जरूरी है, और हदीस पढ़ रहे हैं तो हमारा अमल होना चाहिए। मैंने बच्चों को बहुत लोगों को देखा, ऐसे मना नहीं करते लोग, बिल्कुल उल्टे लेटना, पेट के बल लेटना, हदीस में आता है ये जहन्नमियों का लेटना है, पूरा चित ऐसे लेटना है जैसे ये आप देखें ना कि ये मेरा फोन है इस तरह पड़ा हुआ है तो इसको मैं इसको यूं लिटा दूं, इस तरह लेटना कि पीठ ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इस सूरत में हार्ट अटैक का इतना ज्यादा खतरा है कि आपकी ये पूरा बॉडी जो रिब्स जो हमारा बोझ है ना, ये हड्डियों का होता है, हमारा ये पूरी बैक की हड्डी और सर का स्कल, जब हम उल्टा होते हैं ना इसका बोझ हमारे दिल और पेट पे पड़ता है, ये बहुत खतरनाक है, बचपन से मना करें। और छोटे बेबी को भी कभी ना लिटाएं, ना बिल्कुल यूं लिटाएं ना बिल्कुल लिटाएं, ये तरीका है। आपको पता है कि मैयत को भी टेढ़ा करके लिटाते हैं। तो ये चीजें जो ना, ये सिर्फ हमारे चंद वक्तों के रिचुअल्स नहीं है, ये हमारी आदत डेवलप करते हैं। आप अपने बच्चों के सोने जागने को चेक करें और उनको प्यार से बताएं, अगर आप शुरू से उनको आदत नहीं डाली ना तो आहिस्ता आहिस्ता सोते में जाके उनकी करवट चेंज कर दें, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं डालें। कई लोग खराटे बहुत लेते हैं, उसमें भी ये रीजन है। सोने को अगर सुन्नत के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी सेहत भी होगी। जी
यहाँ पे कमल तारीख के
जी उसकी वजह देखिए कि ये चीज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां भी होती है। हमेशा देखिएगा कि 2 इमाम मुख्तलिफ पढ़ाते हैं, जो पहली पढ़ते हैं वो दूसरी नहीं पढ़ते, लोगों के रश को मेंटेन करने के लिए होता है। हमने खुद वहां रमजान में पढ़ा हुआ है, यानी वो एक किस्म की ऑप्शंस मिल जाती हैं। हम वहां भी जाते हैं तो यही करते हैं। आपका जिसके साथ दिल करे, शुरू वाले के साथ 2 पढ़ लें, दूसरी दूसरे के साथ पढ़ लें, तीसरी तीसरे के साथ पढ़ लें, तो लेकिन वहां इसको मेंटेन करने के लिए बढ़ाया जाता है। मोस्टली लोग यही करते हैं वह, है ना जी। तो बाकी देखिए रमजान में हम एक तरावी भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ आप देखें कि हम फिर 8 रकत फिर भी क्या मले के पढ़ते हैं, तो रमजान के बाद क्या होगा, फर्क है ना। तो बस वही बात है कि कल्ला बदल्ला, अल्लाह के नबी से पूछा क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को कौन से अमाल पसंद है, तो आपने फरमाया कि अदवमुहा, अदवम क्या है, दवाम, एवरलास्टिसिटी। इन कल्ला अगर से वो कलीली हो, करते तो रहे, बाद में अब पता चला कि फरिश्ते कहेंगे रमजान में तो इनकी 20 जमा 8 और भी उसके बाद 3 बेहतर, ये तो कोई 35 तरावियां बन जाती थी क़यामुल लैल के नाम पे, तो आजकल शायद वो भी नहीं है। तो ये हर चीज हमारे माइंड के साथ बहरहाल कंट्रोल होती है। आगे चलते हैं, 7 तुल वितर। अब ये बहुत अहम है कि वितर पढ़ें कब, नमाज वितर के औकात क्या है। वनहा, अनहा से क्या मुराद है, ऊपर जिनका जिक्र था यानी हजरत आयशा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा से रिवायत है, अनहा कालत कुल्ल लैली अवतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के हर हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वितर अदा की। वनतहा वितरहु इला सहरी, मगर आखिर में आपकी नमाज वितर आखिर शब में होती थी। क्या पता चला, ये पूरी रात पढ़ी, कभी शुरू में, कभी मिडल में, कभी आखिर में, लेकिन जो आपका पसंदीदा वक्त था या अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में जो आपने किया वो फजर से पहले का वक्त था। ठीक है, कभी सफर में होते थे, कभी बीमार हैं, जंगों पे हैं, तो मुख्तलिफ हालात के पेश नजर मुख्तलिफ औकात में वितर अदा किए। इसमें क्या पता चलता है, उम्मत की आसानी सहूलत के लिए ऐसा करना है। अच्छा, आपको यहां जवाब मिल गया कि वितर कब पढ़े, किस तरह पढ़ें, क्या करें। आगे भी हदीसें आनी है, मैं आपको सिंपल सी तरीका बताऊं कि द बेस्ट थिंग तो यह है कि फजर से पहले पढ़ें। ठीक है, जब आपको फील हो रहा है फजर का वक्त करीब है, लेकिन अगर आपको डर है, खतरा है कि आप उठेंगे नहीं, तो आप रात को पढ़ लें। अब आप पढ़ चुके हैं रात को, लेकिन आप फिर उठ गए तो नफिल पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। वो रात आप पूरी हो गई, अभी आपकी इसके इधर में ऐड हो जाएगा। लेकिन यह है कि एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़ सकते। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा मारूफ मसला है, और वो क्या है, कहते हैं कि रात को वितर पढ़ लिया, अच्छा जी अब सहरी में उठ गए, अब क्या करें, कहते हैं पहले एक और रकत पढ़ो, फिर वो एक और ये एक दो मिलके 2 हो जाएंगी, बाद में तहज्जुद पढ़ो और एंड पे फिर आप लोग पढ़े, फिर दोबारा वो पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने फरमाया लिया चला आखिर सलाती वितरन, चाहिए कि अपनी आखिर नमाज वितर को बनाए। अन इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लम ने फरमाया इजलू आखिर सलातिकुम बिललैली वितरन, ए लोगो तुम रात की आखिरी नमाज वितर को बनाओ, यानी पसंदीदा उम्र यही है कि आखिर में वितर पढ़े। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि आखिर में 2 रकतें भी पढ़नी चाहिए कि नहीं, वितर के बाद पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे और आपने इसकी रग़बत भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 रकात को बैठकर अदा करते थे, लेकिन हमें खड़े होकर अदा करनी चाहिए, क्योंकि आपको बैठकर नमाज पढ़ने से भी पूरी नमाज का सवाब मिलता था। ये रियायत उम्मत के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ना कि बैठकर पढ़ेंगे तो आधा सवाब होता है, तो लिहाजा बैठ के पढ़ने का मौका ठीक है, लेकिन यह कि खड़े होके पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर होगा। बाबल वित्र अलदाबती, सवारी पर वितर पढ़ना। वन्हु रदी अल्लाहु अन्हुमा काल इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युतिरु लल बईर, फरमाए के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर वितर पढ़ लिया करते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि वितर वाजिब नहीं, अगर ऐसा होता तो सवारी पर अदा ना किए जाते। समझ आ गई आपको किस तरीके से ये सब कुछ होगा। अब इसको समझें कि सवारी पर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। इसके लिए आप और मैं इसको समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर वितर बैठ के पढ़ लिया करते थे। फर्ज नमाज बैठ के नहीं होती बगैर किसी उजर के, तो लिहाजा इससे भी पता चलता है कि वितर फर्ज नहीं है बल्कि ये सुन्नत है और बैठ के अदा की जाए। इसमें एक और तवील हदीस भी आती है कि एक सहाबी थे तो वो सफर में थे, फिर सवारी रोकी और सवारी से नीचे उतरे और नफिल पढ़े या वितर पढ़ा। किसी और ने उनको देखा तो उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा नफिल पढ़े, तो उन्होंने कहा कि तुम अबुल कासम की मुखालफत कर रहे हो। क्या मतलब, कहा मैंने तो अल्लाह के नबी को नफिल सवारी पे पढ़ते देखा, तो तुमने उतरने का तकल्लुफ क्यों किया। तो यहां से क्या पता चलता है कि सुन्नत समझते हुए जब हम कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसमें ज्यादा अजर है। अकल तो कहती है ना, मुश्किल हो सवारी रोको, बैठो फिर पढ़ो, खड़े हो जाओ। बहुत सफा हालात के मुताबिक सवारी पे पढ़ना ज्यादा अजर का जरिया है। मिसाल है, 10 लोग जा रहे हैं और एक बंदे ने अगर नमाज नफिल पढ़नी है वो रोकता है, आप उसके लिए गाड़ी रोकी, चलो जी नफिल पढ़ लो। थोड़ी देर बाद दूसरे का दिल किया तो वो बार बार गाड़ी रुकती रहेगी ना। तो बेहतर है कि वक्त और सहूलत के मुताबिक कंफर्टेबली आप इस चीज को करते रहे, सुन्नत और नफिल फर्ज नहीं किसी किस्म के भी। ठीक है, फिर अल कुनू तो कबल रुकू इबादो, ये बड़ी अहम चीज है, इसको भी गौर से समझिए। इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन लोगों का। क्या है रुकू से पहले और रुकू के बाद कुनूत का उस बयान? अन अनस रदी अल्लाह अन्हो अन्हो सुईला अकनत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुबह قال نعم فقيل अब कनत कबल रुकू قال قنت بعد رکوع يسيرا। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इनसे दरियाफ्त किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर में कनूत पढ़ी है। उन्होंने जवाब दिया हाँ। फिर पूछा गया क्या रुकू से पहले आपने कनूत पढ़ी है? उन्होंने कहा रुकू के बाद थोड़े दिनों के लिए। अब इस हदीस में कनूत वितर का जिक्र नहीं बल्कि ये कनूत नाजिला है। इमाम बुखारी ने यह कयास किया कि जब फर्ज नमाज कनूत में पढ़ना जायज हुआ तो वितर में बतरीके उला जायज होगा। महल्ले कनूत के मुतालिक निसाई में वजाहत है कि वितरों में कनूत रुकू से पहले है और मुस्लिम की रिवायत में कनूत नाजला रुकू के बाद है। अगर वितर में दीगर अदिया भी शामिल कर ली जाए तो इसे भी रुकू के बाद पढ़ना चाहिए। जरूरत दीगर कनूत वितर रुकू से पहले है। अब ये सारा कुछ एक दो रिवायतें और है वो पढ़ के मैं आपको अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करती हूँ। अगली रिवायत के बंद हो रही अल्लाह कनूती وقد كان الكنوت فقيل له قبل ركوع وبعده قال قبله قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد ركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا। हजरत अनस से रिवायत है कि कनूत के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बिला शुबा कनूत पढ़ी जाती थी। फिर दरियाफ्त किया गया कि रुकू से कबल या रुकू के बाद, उन्होंने कहा रुकू से कबल। फिर जब इनसे कहा गया कि फलां शख्स तो आपसे नकल करता है कि आपने रुकू के बाद किए, अराहु काना, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि वो गलत कहता है क्योंकि अराहु उन्होंने देखा काना बास कौमन जो काल लहुमुल कुरा के रसूलुल्लाह ने भेजा एक कौम को जिनको कारी कहा जाता था, जुहा सबीन रजुलन जो 70 लोग थे, बहुत ही कौम के बड़े हुए लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई थी। इला कौमी मिनल मुशरिकीन दून उलाइका वकान बैनहुम व बैन रसूलिल्लाह अहदन फकनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन यदूल अलैहिम। क्या हुआ कि कहा कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ 1 महीना रुकू के बाद कनूत पढ़ी और मेरा ख्याल है कि आपने मुशरिकीन की तरफ तकरीबन 70 आदमी भेजे जिन्हें कारी कहा जाता था। ये मुशरिक इन मुशरिकीन के अलावा थे जिनके और रसूलुल्लाह के दरमियान मुआहदा सुलह था। रसूलुल्लाह ने दुआ कनूत पढ़ी और 1 माह तक इनके लिए बददुआ करते रहे। इन्हीं से एक रिवायत में यह है कि रसूलुल्लाह ने 1 माह तक दुआ कनूत पढ़ी और कबीला राल और जुकवान के लिए बददुआ फरमाते रहे। तो क्या पता चला कि हंगामी हालात के पेश नजर हर नमाज में कनूत की जा सकती है। और यह भी पता चला कि जुल्म पेशा लोगों पर नमाज में बद्दुआ करने से नमाज में कोई खलल नहीं आता। एक और रिवायत अनहु ऐदन काला अल कनूत फिल मगरिबी वल फजरी, हजरत अनस से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि कनूत मगरिब और फजर की नमाज में पढ़ी जाती है। नमाज मगरिब चूंकि दिन के वितर है, बात वासे दिन के वितर है और इसमें कनूत करना साबित है, तो रात के वितरों में कनूत बिल उला की जा सकती है और इसके अलावा वितरों में कनूत करने की सराहत यानी वजाहत अहदीस में मौजूद है। अब ये सारी चीज को जमा कर लेते हैं तो क्या समझ आता है, इसको समझेंगे हम लोग। आप देखिए कि एक वो है जिसको हम दुआ कनूत के साथ जोड़कर वितर के साथ पढ़ते हैं, आम नमाज जो डेली आमतौर पर हम करते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे रात को ही जैसे हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल रह जाता है कि रुकू से पहले या रुकू के बाद। नबी सल्लम ने दोनों तरह से पढ़ा। नमाज नबी हमने जब पढ़ी थी तो उसमें पूरी बहस थी, उसके बाद से मैंने अपने अमल में यही रखा हुआ है कि मैं रुकू से पहले पढ़ती हूँ। कभी बिल फर्ज में भी वंस अ वाइल्ड पहले पढ़ना भूल गया और अब रुकू में चलेगा तो मैं बाद में भी पढ़ लेती हूँ, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उस पर उन्होंने ये साबित किया था कि रुकू से पहले पढ़नी ज्यादा ऑथेंटिक है बाद में पढ़ने से। बहरहाल दोनों में पढ़ेंगे, अब ये बात खत्म हो गई। दूसरी सूरत है कि दुनिया में किसी जगह मुसलमानों पर जुल्म होता है, نان مسلم ہیں، کفار ہیں، وہ مسلمانوں پہ زیادتی کرتے ہیں، کوئی کسی جگہ کاٹا گیا مارا گیا، تو ایسے لوگوں پہ جا کے دیکھیں ہم نہ تو تیر چلا سکتے ہیں نہ تلواریں، لیکن ہم بد دعا کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھ آ رہی. یہ دو قبیلے ہیں، آپ کو واقعہ یاد ہوگا سیرت کا ہم نے پڑھا تھا، سورت مائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے. ان لوگوں نے 70 لوگوں کو بلوایا تھا کہ تبلیغ کے لیے ہمارے پاس آئیں، جب آئے تو انہوں نے بہانے سے ان کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے ایک مہینہ تک ان پہ بد دعا کی. اس قنوت کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. وہ کب کیا جا سکتا ہے؟ فجر میں بھی کیا جا سکتا ہے، مغرب میں بھی، بلکہ یہاں آپ نے پڑھا کہ کسی بھی نماز میں، اور یہ اجتماعی نمازوں میں ہوتا ہے، مثلا مسجدوں میں امام وقت کا جو وہ کرے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مثال ہے کہ نام لے کے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہم علیک بشہود، یا اللہم علیک بالحنود، یا اللہم علیک فلاں، تو یہ کہا جا سکتا ہے، یہ سنت ہے. اب لوگ کہیں گے ہائے کیوں آپ ان پہ بد دعا کر رہے ہیں، تو آپ تو صرف بد دعا کر رہے ہیں، انہوں نے تو لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے. ٹھیک ہے، تو قنوت اور قنوت نازلہ کا یہ فرق ہے. بات واضح ہو گئی ہے؟ جی آپ پلیز.
کل بات کر رہے تھے کہ کافی چیزیں جو حدیث سے نہیں مطلب فالو کی جاتی ہے، تو اسی طرح ہم لوگ بھی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں جو ذکر کا طریقہ امام پڑھا رہے تھے وہ وہی طریقہ جو مسجد کا ہے نا، کہ دوسری دفعہ بھی وہ تشخص کرتے تو تیسری دفعہ بھی نا، تو کیا ان کے پیچھے پھر نماز پڑھنا؟
یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ وہ نماز مغرب کی طرح ذکر پڑھیں گے، تو آپ کیا کریں؟ دو صورت حال ہے، آپ نہ پڑھیں، بعد میں اپنا پڑھ لے، کیونکہ وہ فرض تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، دوسری صورت آپ دیکھیے کہ امام صاحب بیٹھیں گے، آپ کو لگ رہا ہے آپ نہ بیٹھیں ان کے سکت میں، ان کو جوائن کریں، تو بس ایک نیت کر لیں، امام کی نیت آپ سے فرق ہو سکتی، تو بس آپ ایک آخری رکعت ان کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر بالفرض آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور وہ پڑھنے لگے، تو پھر آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری اقتدا کی جائے، تو امام کچھ اور کرے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.